ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति। काबू रोड के ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय परिसर शांतिवन में पिछले तीन दिन से मीडिया कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसका आज समापन सत्र शुरू होने जा रहा है। बहुत सुंदर विषय के साथ तीन दिन से यहाँ चर्चाएं परिचर्चाएं हुई और आज इस समापन सत्र केवल नाम मात्र रहेगा। यहाँ से हम मीडिया कर्मी भाई बहनों के लिए एक नई शुभ शुरुआत होगी। तो आइए आज के समापन सत्र के हमारे विशिष्ट महानुभावों को मंच पर सादर हम आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच आज के हमारे मुख्य वक्ता, हमारे मुख्य मेहमान ब्रदर कुलदीप राय शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार आइसलैंड से यहाँ पहुंचे हैं। आपका मैं सादर स्वागत करती हूँ कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता बी के अमरचंद भाई, सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आगरा, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता ओमवीर सिंह सैनी, सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी मुंबई से है, आपसे भी अनुरोध है। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शिवानी दीदी, जो आज के हमारे सेशन में हमें बहुत सुंदर प्रेरणाओं से सजाएंगे, दीदी को भी हम आमंत्रित करते हैं। आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार जी, आप फॉर्मर VC रह चुके हैं KT यूनिवर्सिटी रायपुर से। ब्रदर आशीष गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेडियो सरगम इंदौर। ब्रह्मा कुमारी सरला आनंद बहन, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग हैदराबाद। ब्रदर राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, एजुकेशन प्रभाग के आप चेयरपर्सन हैं। और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी, आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मीडिया विंग के हमारे राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मा कुमार शांतनु भाई से भी अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी आज के वक्ताओं को हम सादर स्वागत करते हैं। मंच पर अपने अपने स्थान पर अपनी सीट ग्रहण करेंगे और परमपिता परमात्मा, जो सर्व शक्तियों के स्रोत हैं, गुणों के स्रोत हैं, उनको हम याद करके इस सभा में आह्वान करेंगे। आज बहुत सुंदर विषय के साथ ये समापन सत्र शुरू होने जा रहा है, शांति और सद्भाव के लिए आध्यात्मिक ज्ञान। इसमें मीडिया की भूमिका क्या रहेगी, हम मीडिया कर्मी शांति और सद्भाव इन मूल्यों के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर आज हम इस विशिष्ट महानुभावों के विचारों को जानेंगे, अनुभव करेंगे। सभी महानुभाव चंद क्षणों में हमारे बीच पहुंचेंगे। हम परमात्मा की मदर स्मृति में बैठते हैं।
मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम हो वरदानों के दाता हो तुम सृष्टि के ज्ञाता हो वरदानों के दाता हो हम तुमको पाकर पाए गति सद गति उपहार महिमा अपरंपार तेरी महिमा
बहुत सुंदर मधुर शब्दों भरा गीत हमने सुना जिसमें परमात्मा की महिमा हमने सुनी। परमात्मा वो शक्ति है, वो दिव्य तेज है जिसकी अनुभूति पिछले 3 दिनों से आप यहाँ कर रहे हैं इस परिसर में, जिसे परमात्मा का ही ये कार्य चल रहा है। आपने ये अनुभव किया, वक्ताओं के मुखारविंद से भी ये सुना। तो ऐसी दिव्य महान सर्वोच्च सत्ता की शक्तियों को हम जीवन में उजागर करें उसके लिए ये सत्र हमें मदद करेगा। और आज हमारे इस मंच के महानुभावों का आदर सत्कार करने के लिए बड़ोड़ा से पधारी हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि मंचस्थ महानुभावों का पुष्प गुच्छ और बैज के द्वारा स्वागत करें, अभिवादन करें। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में स्वागत ये एक बहुत बड़ी विधि है, और इस विधि में जुड़ने के लिए हम सभी करतल ध्वनि से तालियों से हमारे महानुभावों का स्वागत करेंगे। साथ साथ में साफा पहना करके भी इन महानुभावों का सम्मान हो रहा है। तालियां गूंजनी चाहिए, आवाज पहुंचना चाहिए कि महानुभाव विशेष हमारे बीच है। पुष्पों की सुगंध केवल एक दिन की होती है, जितना पुष्प का आयुष्य रहता है उतने में वो अपनी सुगंध को ऐसी फैलाता है जैसे पूरा कमरा महक जाए। तो पुष्प से हम ये सीखे कि हमारा जीवन भी सदा महकता रहे। हमारे बीच आज के इस सेशन के मुख्य वक्ता कहो, प्रेरणा स्रोत कहो, और जिनके आकर्षण से सुनने के लिए हम आए हैं, हमारे बीच आदरणीय शिवानी दीदी भी अभी पहुंच रहे हैं। दीदी जी भी आज हम सबको विशेष कुछ टिप्स देने के लिए आज आ रहे हैं, तो शिवानी दीदी का भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैं समझती हूँ कि आज की हमारी सभा का विशेष आकर्षण भी आदरणीय दीदी जी ही है, तो दीदी जी का हम अभिवादन करेंगे। स्वागत की श्रृंखला बड़ी लंबी होती है। भारतीय संस्कृति में स्वागत एक परंपरा के रूप में भी निभाया जाता है, तो आज इस स्वागत की कड़ी में मैं स्वागत करने के लिए हमारे बीच आदरणीय शिवानी दीदी जी पहुंचे। हम सभी खड़े होकर के एक बार खड़े होकर के दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी ने खास हम मीडिया कर्मियों के लिए अपना समय निकाला है, और दीदी स्वयं मीडिया प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए दीदी जी का आज के समापन सत्र में ब्रह्मा कुमारी की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी जी आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। हमारे आज के सत्र के चीफ गेस्ट भ्राता कुलदीप राय शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदामान निकोबार द्वीप समूह से है। आदरणीय विजया दीदी, आदरणीय शिवानी दीदी का फूल और बैज से स्वागत हो रहा है। एक बार जोर से दीदी जी का हम अभिवादन करेंगे। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत है। स्वागत की इन कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी खारंगपुर से आदि नृत्य कला डांस अकेडमी के कलाकारों को। बहुत सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। स्वागत के नृत्य के शब्द है अधरम मधुरम। अभी ही थोड़े दिन पूर्व हमने सभी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए उनके जैसे दिव्य गुणों को अपने अंदर भरने के लिए ये नृत्य हमें मदद करेगा। तो मैं खारंगपुर से पधारे हुए कलाकारों को आमंत्रित करती हूँ आदि नृत्य कला डांस एकेडमी के छोटे छोटे कलाकार जो कृष्ण महिमा का बहुत सुंदर नृत्य लेकर के हमारे बीच एक संदेश देने आ रहे हैं। श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए, उनके जैसा बनने के लिए, उनके जैसे दिव्य गुणों को अपने अंदर भरने के लिए आइए हम इस नृत्य के द्वारा प्रेरणाएं प्राप्त करें। कलाकारों का एक बार हम सभी स्वागत करेंगे और सराहना करेंगे।
Thank you.
बहुत सुंदर इन सप्त ऋषियों सप्त सितारों ने हम सभी के बीच में कृष्ण की महिमा का उसके एक एक कर्तव्य का गुणगान करके हमें कृष्ण की दुनिया में जाना है ये स्मृति दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद इन कलाकारों का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमार अमरचंद भाई। आप आगरा से हमारे मध्य पहुंचे हैं, आगरा स्थित हमारे बीच उससे पूर्व आदरणीय भ्राता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी आप पधारे हैं। मैं भाई साहब का आमंत्रित करती हूँ बहनों को स्वागत करने के लिए। राजयोगिनी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी हमारे एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन है और इस हमारे मुख्यालय हेडक्वार्टर में आपकी यहाँ की कॉन्फ्रेंस की बहुत संभालने की जिम्मेदारी है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता अमरचंद भाई को। आप सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आगरा से हमारे बीच है। शब्दों के द्वारा आप हम सभी का स्वागत करें भ्राता अमरचंद।
थैंक यू। ओम शांति। मंचासीन सभी सम्माननीय महानुभाव भारत और नेपाल के विभिन्न स्थानों से पधारे यथास्थान विराजित सभी मीडिया मनीषी भाई बहनों का इस समापन सत्र में इस वेलीडिक्टरी सेशन में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वेलकम वेलकम वेलकम। आज की सभा के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता डॉक्टर वी के मृत्युंजय जी ईश्वरी सेवा में प्राण प्रण से तत्पर ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पधारे चीफ गेस्ट माननीय भ्राता कुलदीप राय शर्मा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणाओं के परम स्रोत परमपिता परमात्मा की वरदानी मूर्त गुरुग्राम से पधारी विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका सिस्टर बीके शिवानी जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर मान सिंह परमार जी पूर्व वीसी केटी यूनिवर्सिटी ऑफ जे एंड एम सी रायपुर छत्तीसगढ़ से आप पधारे हैं, आपका भी हृदय से आभार, वंदन है, अभिनंदन है। इंदौर से पधारे भ्राता आशीष गुप्ता जी मैनेजिंग डायरेक्टर रेडियो सरगम आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता ओमवीर सैनी जी मैनेजमेंट कंसल्टेंट दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी मुंबई का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सिस्टर वी के सरला जी नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आरईआरएफ आप हैदराबाद से पधारे हैं, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है, वेलकम। सिद्धपुर से पधारी सिस्टर वी के विजया जी सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भ्राता वी के सुशांत जी नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आरईआरएफ शांतनु जी सॉरी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। सिस्टर वी के नंदिनी सब जोनल कोऑर्डिनेटर एडिशनल जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग आरईआरएफ अहमदाबाद आपका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और आपका सभा में पधारे हुए पुनः हार्दिक अभिनंदन है और वंदन है। मैं अपनी एक बात शेयर करूंगा आपको। आज 10 सितंबर कल 11 है, 11 सितंबर 1893 आज से 130 साल पहले शिकागो सम्मेलन हुआ था जिसमें एक सर्वधर्म सम्मेलन था और भारत की ओर से हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर कुछ कहा था और इस ज्ञान में आने से पहले उनकी बात मुझे याद है तो मैं उसको आपको शेयर करता हूं। उन्होंने कहा था helping man spiritually is the highest help. One who gives man spiritual knowledge is the greatest benefactor of mankind. मैं सोचता था कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, ये स्पिरिचुअल हेल्प क्या है. विद्यार्थी जीवन से फिर संस्था के संपर्क में आना हुआ, आखिर स्पिरिचुअल हेल्प है क्या. अब स्पिरिचुअल हेल्प के बारे में हम पता करें, स्पिरिचुअल विजडम के बारे में पता करें, तो लोगों ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में आध्यात्म की बात है, भगवान की बात है. खुद भगवान ये कहते हैं, भगवान वाची बात भगवान ने कही है, वो तो बात सत्य होगी. तो भगवान ने क्या कहा है, तो गीता की एक पुस्तक थी उसे मैंने पढ़ा. भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन. एक जगह बताया कि आत्मा का नाश करने वाले तीन नरक के द्वार है. आत्मा का तो नाश नहीं होता, आत्मा के नाश से तात्पर्य यह था उसको डाउनफॉल पतन की ओर ले जाने वाले तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ. हे अर्जुन तू इन्हें छोड़ दे. फिर उसमें एक बहुत सुंदर बात बताई गई थी, वो मुझे लगी. वो क्या थी, शक्नोति हरि सोढ़ प्राग शरीर विमोक्षणार्थ. जो व्यक्ति इस शरीर को रहते हुए, इस शरीर को छोड़ने से पहले, इसके नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेगों पर कंट्रोल कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, सयुक्त से सुखी नर, माना वो योगी है और वो सुखी है. अब ये आध्यात्म के लिए फिर मेरा यहां आना हुआ, लेकिन समय है, समय की सीमा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी एक बात है जो उसको मैं कहना चाहता हूं, और वो ये है, वो अनुभव है मेरा. शायद आपको ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए काम आएगा. पढ़ता था वो शास्त्र जाने कहां कहां जाता था, जीवन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता था. मूल प्रश्न था यही कि मैं हूं कौन, कहां जाऊंगा, याद रहेगा प्रश्न अनुत्तरित, नहीं जान पाऊंगा. चर्च और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब में घूमा, मिलान उत्तर कहीं बहुत था, मैंने इसको ढूंढा. मेरा मन तो चाह रहा था अतीन्द्रिय सुख पाना, मैं हूं कौन, कहां से आया और कहां जाना. एक समय सुंदर आया जब मैंने सच्चा सुख पाया, प्यारे प्रभु से मिलन मनाया, प्यारे प्रभु से मिलन मनाया. तो ये मेरी बात है. तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कहता हूं, एक नेशनल पोइट की लाइन है, होता विदा जगत से जग को कुछ रमणीय बनाकर. आप लोगों की बहुत जिम्मेवारी है, आप चौथे स्तंभ में लोकतंत्र के चौथी टांग है. एक टांग टूट गई तो फिर तीन टांग पर लोकतंत्र खड़ा नहीं रह सकता, ये 100% सही बात है. होता विदा जगत से जग को कुछ रमणीय बनाकर, साथ हुआ था जहां वहां से कुछ आगे पहुंचाकर. वह सुख जो मिलता असंख्य मनुजों का अपना होकर, हंसकर उनके साथ हर्ष में और दुख में रोकर. लेकिन उसके लिए मन का होगा आधिपत, जिस दिन मनुष्य के तन पर होगा त्याग अधिष्ठित, जिस दिन भौगोलिक जीवन पर कंचन को नरसाध्य नहीं साधन जिस दिन जानेगा, जिस दिन सम्यक रूप मनुष्य का मानव पहचानेगा, उस दिन होगा सुप्रभात. उस दिन होगा सुप्रभात नरके सौभाग्य उदय का, उस दिन होगा शंख ध्वनित मानव की महाविजय का. मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. आपने सुना ओम शांति.
कमल चंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद. आपने सभी का बहुत दिल की गहराई वाले शब्दों से स्वागत किया. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय शिवानी दीदी को, क्योंकि आप सभी का इंतजार यही है और शिवानी दीदी का परिचय आप सभी को है ही, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जो शिव की सेवा में सदा समर्पित है ऐसी हमारी शिवानी दीदी, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, भारत और देश विदेशों में आपका भ्रमण होता रहता है ईश्वरीय सेवा अर्थ, और आपकी वाणी ही आपका परिचय है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2019 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी साहब के हस्तों से आपको नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया है. आप प्रसिद्ध टीवी चैनल पर आपके समय प्रति समय कार्यक्रम 2007 से अविरत आज दिन तक चल रहे हैं. आपकी यूट्यूब चैनल मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूअर्स सभी फॉलो करने वाले फॉलोअर्स है। शिवानी दीदी का परिचय मैं ज्यादा नहीं देना चाहती हूँ, आपकी वाणी ही आपका स्वयं का परिचय है। आदरणीय शिवानी दीदी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज हम सबको कुछ विशेष प्रेरणा दे। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। ये अभ्यास आपने पिछले 3 दिनों में कई बार किया होगा, लेकिन कल से या परसों से हम वापस अपने अपने कर्म स्थान पर पहुंचेंगे। वातावरण बदलेगा, माहौल बदलेगा, संग बदलेगा, बातें बदलेंगे, लेकिन जब सब कुछ बदलेगा उसमें अपनी स्थिति को इसी तरह शांत और शक्तिशाली रखने के लिए ये अभ्यास दिन में कई बार करना होगा। सुब्रिकुटी के बीच अपने आप को देखें, वो चमकता हुआ सितारा, देखें उस सितारे को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, दोहराएं इस बात को मन में, कहें अपने आप से, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मैं शांत हूं, स्थिर हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा और संभव को संभव करती हूं। परमात्मा का मैं फरिश्ता हूं। सृष्टि परिवर्तन के इस कार्य में मैं आत्मा परमात्मा के साथ इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में अपने संस्कार परिवर्तन से सत्यों की सृष्टि का आह्वान करती हूँ। मैं सत्यों की आत्मा, दिव्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, ओम शांति। जैसे हम दिन में बीच बीच में रुककर पानी पी लेते हैं, जैसे हम बहुत देर से अगर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं तो 1 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, और ये 1 मिनट का बैठना, ये कुछ क्षण निकाल कर पानी पी लेना, ये शरीर को एक शक्ति और ऊर्जा देता है, और अगले कई घंटों तक वो शरीर अथक होकर काम कर लेता है। इसी तरह अगर हम बीच बीच में 1 मिनट के लिए रुक जाएं और फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, हर परिस्थिति का सामना करने की मेरे पास शक्ति है, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, अगर हर घंटे बाद ये अपने आप को याद दिलाया जाए तो धीरे धीरे ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये हमारा संस्कार बन जाता है। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, तो जिस भी संकल्प को बार बार दोहराया जाएगा वो सिद्ध होना ही होना है।
एक ऐसे युग में जहां ज्यादातर हम कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं परेशान हूं, मैं उदास हूं, मैं निराश हूं, आजकल कई बच्चे कहते हैं मैं डिप्रेस्ड हूं, और अगर उन शब्दों को वो बार बार दोहराते जाएंगे, बार बार वही हम बात बोलते जाएंगे, तो संकल्प से सिद्धि है, वही संस्कार हमारा बनता जाता है। तो मीडिया का रोल इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मीडिया सिर्फ सुनना, देखना और पढ़ना नहीं, मीडिया हमारी सोच बन जाता है, मीडिया हमारी भाषा बन जाता है, और धीरे धीरे मीडिया हमारा संस्कार बन जाता है। बचपन से हमने सुना है कि संग का रंग लगता है, राइट? आप स्वीकार करते हैं संग का रंग लगता है? सब मानते हैं ना संग का रंग लगता है। 3 साल का बच्चा है, 3 साल तक तो वो घर के परिवार के संग में रहता है, परिवार की भाषा बोलता है, परिवार की मर्यादाओं पर चलता है, लेकिन फिर वो 3-4 साल की आयु में पहली बार स्कूल जाता है और थोड़े दिन के अंदर उसकी भाषा में परिवर्तन आने लगता है। लोग कहते हैं वो स्कूल जाना शुरू हुआ ना, रंग लगना शुरू हो चुका है। तो हम सब ध्यान रखा करते थे, और आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि उनके दोस्त कौन से हैं, वो कौन से स्कूल में जाते हैं, वो किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि संग के रंग से संस्कार बनते हैं। लेकिन इस समय जब हमारे हाथ में इतनी टेक्नोलॉजी है, तो इस समय सबसे बड़ा संग का रंग कौन सा है? कौन सा है? सबसे बड़ा संग का रंग कौन सा है? मीडिया, मोबाइल। मतलब क्या? मोबाइल तो बना था सिर्फ फोन पर बात करने के लिए है, लेकिन अब फोन पर तो दिन में कभी कभी बात होती है, कितनी देर बात करेंगे फोन के ऊपर, लेकिन अब फोन बात करने के लिए कम, और किस चीज के लिए यूज हो रहा है? कुछ ना कुछ सुनना, पढ़ना, देखना। तो संग का रंग अब हमारी जेब में हमेशा साथ रहता है, वो ही हमारा सदा दोस्त है। कुछ भी बात हो तो हम फटाफट खोलकर उस पर ढूंढना शुरू करते हैं, दूसरों से राय कम लेते हैं। और जब मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं, लेकिन हर एक की जेब में उसका संग बन जाए, तो फिर मीडिया की जिम्मेवारी कई गुना और बढ़ जाती है। आज वर्ल्ड सुसाइड डे है। अभी हम ऊपर माउंट आबू में थे, ज्ञान सरोवर जो कैंपस है उसमें डॉक्टर्स की रिट्रीट चल रहे थे। तो एक डॉक्टर ने सेशन के बाद पीछे आकर कहा कि आपको पता है उस शहर में कितने सुसाइड हुए हैं पिछले 2 महीने के अंदर? और फिर उन्होंने एक फिगर बताया, तो सामने वाले से किसी ने कहा नहीं उतना नहीं, 2 और बढ़ गया है। किसी का बच्चा है वो, किसी का बच्चा है वो, लेकिन आज वो हमारे लिए एक संख्या, एक स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, और ये स्टैटिस्टिक्स बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हर एक को बहुत कंसर्न है कि क्या हुआ हमारे बच्चों को, क्या हुआ हमारे युवाओं को, क्यों वो बातें तो पहले भी आती थी, कोई अभी थोड़ी आ रही है सिर्फ, क्यों उनके पास बात का सामना करने की शक्ति नहीं है, क्यों वो अगर जीवन में कुछ फेलियर आ जाए उसका वो सामना नहीं कर सकते हैं, क्यों ये सब हो रहा है? तो प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। आप सब भी इस समाचार को दुनिया तक पहुंचाते हैं और इन प्रश्नों को दुनिया के सामने उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब समय आया है ऐसा क्यों नहीं, उस क्यों का समाधान करने का। होना चाहिए समाधान, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए समाधान, यस, समाधान होना चाहिए। आप उस समाधान का हिस्सा बनने के लिए रेडी है? क्या आप उस समाधान का हिस्सा बनने के लिए रेडी है? कौन कौन रेडी है उस समाधान का हिस्सा बनने के लिए? सिर्फ जो हुआ है वो नहीं सबको बताना है, वो तो बताना ही है मतलब, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हर एक की मानसिक शक्ति बढ़ जाए, और सिर्फ बच्चों की और युवाओं की नहीं, हर एक की, हर एक की। अगर हम 25-30 साल पहले जाते हैं, आप में से कौन कौन 30 साल पहले स्कूल या कॉलेज में था, हाथ उठाना एक बार। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट जेनरेशन है जिसने वो वाली दुनिया देखी है। तो अगर हम 30 साल पहले जाते हैं तो 30 साल पहले जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तब पहला फोन आया था, तब पहला टीवी आया था। हम वो जेनरेशन है जिसने इन सारी चीजों का पहला देखा है, फर्स्ट। किस किस ने पहला देखा है? पहला फोन, पहला टीवी, पहला कंप्यूटर, पहला लैपटॉप, पहला इंटरनेट, पहला मोबाइल, पहला सोशल मीडिया, सब कुछ का पहला हमने देखा है। और क्योंकि सब कुछ का पहला हमने देखा है तो हम उसका इम्पैक्ट जानते हैं। अगर आप सिर्फ एक ग्राफ बनाइए कि जैसे जैसे ये चीजें आती गई समाज में, समाज का परिवर्तन कितना होता गया। तो जब हमारे पास पहला टीवी आया था और शुरू शुरू के वो पहले सीरियल शुरू हुए थे, हफ्ते में एक दिन आता था, राइट? हफ्ते में एक दिन आता था और वो भी काफी सात्विक होता था, उसकी भाषा भी मर्यादा के अंदर हुआ करती थी, पूरा परिवार बैठकर उसको एकजुट देखा करता था। और हफ्ते में एक ही दिन आता था आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए। लेकिन क्योंकि हमने उसको इतना कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो वो तो किसी का बिजनेस है ना। तो अगर एक दिन वो बिकता है, उन्होंने हर रोज बनाना शुरू किया और हम सब हर रोज अपने टीवी के सामने बैठ गए, हर रोज हमने उसको देखना शुरू किया। जैसे ही वो हर रोज बनना शुरू हो गया तो हर रोज अच्छी अच्छी कहानी कैसे दिखाएंगे? थोड़े दिन पहले सेंटर पर कुछ एक्टर्स आए थे तो उनसे ऐसे ही कहा, भाई कुछ अच्छा दिखा दो उस सीरियल के अंदर, क्या बार बार झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई कुछ। तो वो बहुत प्यार से मुस्कुराने लगे, कहते अगर हमने ये दिखाया कि ये भी खुश है, ये भी खुश है, ये सब खुश होकर रह रहे हैं, तो वो तो एक ही एपिसोड में कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम अगले दिन क्या दिखाएंगे उस एपिसोड के अंदर। तो अगले दिन दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो बनाते गए, हम देखते गए, वो बनाते गए, हम देखते गए। तो फिर वो हफ्ते में हर रोज नहीं, फिर एक फैसिलिटी आई कि रिकॉर्ड करो, कभी भी देखो। वो हमारी नेक्स्ट डिस्कवरी थी, वो भी बिकने लगी। फिर जिनका वो बिजनेस था उन्होंने कहा, क्यों नहीं सब कुछ को फोन पे डाल दो, जब जिसको देखना हो उस दिन वो देखता रहे, उस समय देखता रहे। इसका ग्राफ बनाइएगा, इसका ग्राफ बनने की जरूरत है। हमें एक सेकंड में पता चल जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि जैसे जो हम खाते और पीते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, शरीर का स्वास्थ्य बनता है, उसी तरह जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, बोलिए एक बार, बोलिए, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे मन का स्वास्थ्य बनता है, उससे हमारे संकल्प बनते हैं। और बार बार जो संकल्प कर लिए तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और जो बार बार संस्कार यूज कर लिया वो हमारा कर्म बन जाता है, और हमारा कर्म बार बार जो हो गया तो वो हमारा भाग्य बन जाता है। तो कंटेंट, मीडिया कंटेंट है, कंटेंट है, कंटेंट हमारी इमोशनल डाइट है, यहाँ की खुराक है, यहाँ की खुराक है। और यहाँ की खुराक से, यहाँ की स्थिति से मानसिक स्वास्थ्य, मन का असर तन के ऊपर, शरीर का स्वास्थ्य, मन के वाइब्रेशंस का असर रिश्तों पर, रिश्तों का स्वास्थ्य, और मन की स्थिति का असर पर्यावरण पर। तो पर्यावरण की स्थिति क्या है? सब कुछ संकल्प से बनती है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है, और कंटेंट से संकल्प बनते हैं। तो कंटेंट से क्या बनना शुरू हो गया? फिर कंटेंट से क्या बनना शुरू हुआ? तो कंटेंट से सृष्टि बननी शुरू हुई। अब क्योंकि वो सारा दिन हमारे फोन पर आ गया तो हम कंटिन्यूसली अभी क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें, क्या डालें के लिए करते करते हम कहां के कहां के कहां चले गए। हमारी भाषाएं बदल गई, हमारी मर्यादाएं टूट गई, हमारे शब्द जो हम यूज कर रहे थे वो बदल गए। क्योंकि हमने देखा कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं, कोई चीज को उस तरह से बनाते हैं तो ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं। राइट बात है कि नहीं? राइट है बात? अगर आप किसी वीडियो का एक सिंपल सा टाइटल बना दो तो थोड़े से व्यूज आएंगे, लेकिन उसी वीडियो का टाइटल आप थोड़ा सा घुमा फिरा के दूसरे तरह के शब्द यूज कर दो, अभी अभी दो घंटे के अंदर लाखों लोग उस पर आ जाएंगे। और उसके लिए हमने बहुत सारे नियम मर्यादाएं उसको तोड़ दिया। हम बनाते गए, वो हमारा काम था, हमारा शौक था, और लोग उसको लेते गए। और सबसे ज्यादा उसको वो लेते गए जो बच्चे हैं। हम सब ने तो वो तब लेना किया शुरू किया जब हम 25-30 साल के हो चुके थे, उन्होंने तब से लेना शुरू किया जब वो 2-3 साल के हैं। और अगर 2-3 साल की आयु में सही खुराक न मिले तो उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यस, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहले भी होते थे, प्रेशर्स पहले भी होते थे, इस तरह के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाकर प्रेशर पहले भी होते थे। अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब धीरे धीरे इन सभी कॉलेजेस में वो युवा आएंगे जिनके बचपन से उनको कंटेंट मिला था, और ये डायरेक्ट साइन है। प्रेशर नहीं बढ़े हैं, प्रेशर का सामना करने वाली शक्ति घटी है। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला फिजिक्स में सिखाया जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब बाहर से आने वाली परिस्थिति, और रेजिलियंस मतलब उसको सामना करने वाली मेरी आंतरिक शक्ति। हम कह रहे हैं बच्चों के प्रेशर बहुत बढ़ गए हैं, प्रेशर तो घट गए हैं आजकल, प्रेशर तो घट चुके हैं आजकल। आप 30 साल पहले का प्रेशर देखो और अभी का प्रेशर देखो। 30 साल पहले का एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम देखो और अभी देखो। 30 साल पहले हम एक हफ्ते में सारे एग्जाम देते थे, आजकल एक एग्जाम देते हैं, एक हफ्ता छुट्टी होती है, फिर दूसरा एग्जाम देते हैं। प्रेशर बढ़े हैं ये, प्रेशर घटे हैं? ये प्रेशर घटे हैं। पहले घर छोटे होते थे, अपना अपना कमरा भी नहीं मिलता था, इंटरनेट भी नहीं था, क्लास में जो पढ़ लिया, नहीं सुना तो गया। आज सब कुछ है, तो हम क्यों कह रहे हैं इनके प्रेशर बढ़ गए? उनके प्रेशर नहीं बढ़े हैं, उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है पहले से। उनके प्रेशर तो घटे हैं, लेकिन उनके प्रेशर का सामना करने वाली आंतरिक शक्ति घट गई है। तो जिम्मेवारी ये है कि प्रेशर को नहीं घटाना है, क्योंकि जीवन प्रेशर घटाने नहीं वाला है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में हमारे प्रेशर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या लगता है, परिस्थितियां चैलेंजेस बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या आंसर है, बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे ना, तो फिर उनको उसको सामना करने की शक्ति देनी पड़ेगी ना। अगर अभी से उनको घटाते रहेंगे तो छोटी सी बात भी आएगी तो उनके पास सामना करने की शक्ति नहीं होगी। तो इस समय हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो बच्चे ये कॉन्टेंट कंज्यूम करना कम कर दें, और ये उनको हम रोज बोलते हैं कि अटेंशन, सारा दिन क्या देखते जा रहे हो, क्या पढ़ते जा रहे हो, क्या सुनते जा रहे हो, वो आप बन रहे हो। तो या तो वो उसको कम कर दें तो उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी, या वो कंटेंट जो बना रहा है वो अपनी मर्यादाओं और जिम्मेवारियों को और कड़क कर ले तो वो बच जाएंगे। दोनों में से कोई एक तो होना ही पड़ेगा, दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनी, जिम्मेवारी किसकी बने, किसकी बने? लेकिन जब कभी कभी हम कुछ भाई बहनों से बात करते हैं कि आप ऐसी चीज क्यों बनाते हो, कहते ऐसी चीज ही तो देखते हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेवारी वन एज अ मीडिया पर्सन है, लेकिन दूसरी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम सब एक ऑडियंस भी हैं, है ना, हम सब एक ऑडियंस। अगर हम जो ऑडियंस है, क्योंकि हम सब एक ऑडियंस है, हम सब फोन से कंज्यूम कर रहे हैं, हम सब मैगजीन से कंज्यूम कर रहे हैं, हम सब अखबार से कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो ऑडियंस है, अगर हम अपने टेस्ट को बदल रहे हैं तो बनाने वाले बनाने वाली चीजों को बदल लेंगे। तो जिम्मेवारी हम पर सबसे बड़ी बनती है कि हम क्या सुनना पढ़ना देखना पसंद करते हैं उसको बदल लें। अगर आप किसी के घर खाने पे गए और उसने 6 चीजें आपके लिए खाने के लिए बनाई, उसमें 2 चीजें थी फल था, सैलेड था, बड़ी अच्छी खुराक वाली चीज थी, और दूसरी जगह था समोसे थे, चाट पापड़ी थी, तो हम किस तरफ जाते हैं? हम किस तरफ जाते हैं? हाँ, तो हम कहते हैं इसमें कौन सी बात करने की चीज है, जब समोसे चाट पापड़ी सामने पड़ी होगी तो फल खाने कौन जाएगा? तो ऑब्वियसली अगली बार जब हम उनके घर जाएंगे तो वो एक चीज भी अच्छी नहीं बनाएंगे, वो सारी छह चीजें वैसे ही बनाएंगे जिसको हम खाएंगे। तो बनाने वाले की तो जिम्मेवारी होती ही है, लेकिन बनाने वाले की जिम्मेवारी से ज्यादा उसको सुनने पढ़ने देखने वाले की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। अगर सुनने पढ़ने वाले देखने वाले अपनी चॉइस बदल दें तो बनाने वाले तो अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं, वो तो रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन हम एज अ कंज्यूमर, एज एन ऑडियंस, हमें अपने टेस्ट को बदलना पड़ेगा। और अगर हमने बदल दिया तो हम बहुत बहुत सारे बच्चों के संस्कार, आत्मिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को हम बचा लेंगे। ये हमारा कर्म बनता है। आई एम श्योर आपने पिछले 3 दिन में ये जरूर सुना होगा कि हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। सुना था? हमारे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो अटेंशन, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं वो ही बनता है, और जब वो ही बनता है तो वो बच्चे वो ही सुनते पढ़ते देखते हैं। तो मैंने सिर्फ देखने का कर्म किया, लेकिन मेरे उस कर्म करने की वजह से वो चीज और ज्यादा फैल चुकी, और क्योंकि वो और चीज ज्यादा फैल चुकी उसने बहुत सारे लोगों के मन पर असर कर दिया, तो मेरे उस कर्म का भाग्य मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो हमारी जिम्मेवारी है। सिर्फ हर रोज बोलना है ऐसे क्यों हो रहा है, इसको कौन ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा? हम ही तो सब मिलकर ठीक करेंगे, किसी और की तरफ थोड़ी देखा जा सकता है। हम मिलकर ठीक करेंगे। वो किसी के बच्चे हैं, हम सिर्फ अपने बिजनेस, हमारी इनकम, अपनी उसको नहीं देख सकते। हमें देखना होगा इसका इम्पैक्ट समाज के ऊपर अब कहां तक जा रहा है। तो इसलिए आज दोनों तरफ से अपनी जिम्मेवारी देखते हैं, खाना बना के परोसने वाले की जिम्मेवारी, और उस खाने में से क्या हम चूज करके खाते हैं उसकी जिम्मेवारी। जब हम, क्योंकि हम तो दोनों तरफ हैं, हम बनाने वाली साइड पर भी हैं, हम खाने वाली साइड पर भी हैं, जब हम वो जिम्मेवारी को देखना शुरू कर दें तो हम बहुत जल्दी एक ऐसा युग ला सकते हैं जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मा के संस्कार और आत्मा के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। स्वर्णिम भारत इसके बिना बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो हम सब स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं ना, हम सब स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं? लग नहीं रहा? हाँ, तो फिर ना चेहरे पे कोई रौनक है, ना कोई खुशी आ रही है, ना बोल रहे हो कि हाँ हम बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं ना। तो स्वर्णिम भारत के लिए क्या चाहिए? स्वर्णिम भारत के लिए सत्युगी संस्कार चाहिए, सत्योगी संस्कार के लिए सत्योगी सोच चाहिए, और सत्योगी सोच के लिए सत्योगी कंटेंट चाहिए। तो फिर जिम्मेवारी किस पर आ गई? हमारे पर आई है। तो जैसे हम समाज के अलग अलग वर्ग पर देखते हैं और हम कहते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं और हम कहते हैं हम वो क्या कर रहे हैं, ऐसे भारत कैसे बनेगा वो, तो हमारे को अपने ऊपर अटेंशन रखना है। और इसकी शुरुआत हमारे खुद से होगी, ये हमारी खुद से होगी। अगर हम हर रोज, जैसे आपने आज यहाँ सीखा पिछले 3 दिन में, अगर हम हर रोज सिर्फ 15-20 मिनट भी, अगर हम हर रोज अपने दिन की शुरुआत सात्विक कंटेंट से करें, उसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म अर्थात वो कंटेंट जिसके अंदर पवित्रता है, शक्ति है, शांति है, खुशी है, क्षमा है, एकता है, सम्मान है। उस कंटेंट से अगर सुबह सुबह हम दिन की शुरुआत 10-15 मिनट भी करते हैं तो सारा दिन के लिए वो खुराक बहुत अच्छी काम करती है। और जब वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है तो आत्मा ऑटोमेटिकली दूसरी खुराक से अपने आप ही किनारा कर लेती है। और जब हम किनारा करना शुरू कर देंगे तो बनाने वाली चीज चेंज कर देंगे। तो ये जिम्मेवारी हमारी बनती है। तो क्या आप आज यहाँ से जाएंगे, कल या परसों में, आप जाने से पहले ये पक्का कर सकते हैं कि आप रोज सुबह का आधा घंटा अपने लिए रखेंगे? क्या आप रोज सुबह का आधा घंटा अपने लिए रख सकते हैं? यस, यस स्पेशली हर एक को करना, लेकिन स्पेशली जो मीडिया में सेवा करते हैं, क्योंकि सारा दिन में बहुत सारी बातें सुट पर देख रहे हैं। मुझे अगर दूसरे को एक आर्टिकल लिख कर देना है, मुझे अगर दूसरे को कोई वीडियो बनाकर देना है, दूसरे ने तो एक बार में फटाफट से पढ़ लेना है, लेकिन उसको लिखने के लिए मुझे कितनी बार उसको शब्दों को यूज करना पड़ता है, मुझे उन शब्दों को कितनी बार यूज करना पड़ता है। तो समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो तो पड़ ही रहा है, लेकिन बनाने वाले पर उसका कितना प्रभाव पड़ जाता है उस हर शब्द का। लेकिन हम कहेंगे क्या करें, वो हमारी जॉब है, एब्सोल्यूटली वो हमारी जॉब है, लेकिन हर जॉब के कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। जैसे ऊपर आज कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर्स थे, वो उनका काम है, लेकिन उसके लिए वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर रखते हैं, वो अपने हाथों को दिन में 15-20 बार धो लेते हैं ताकि उनको किसी की इन्फेक्शन कैच न करे। हमारा अगर काम है कि हमें ये सारी बातें समाज तक लेकर जानी है, तो फिर हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसका खाने से दूसरों के ऊपर इतना असर पड़ रहा है, तो बनाने वाले के ऊपर कितना असर पड़ रहा होगा। इसलिए अपने आप को ये सौगात दे, एक गिफ्ट दे आज अपने आप को, कि हर रोज दिन की शुरुआत कम से कम 20 मिनट आधा घंटा, ऐसे नहीं बस उठे फोन को ऐसे ऐसे देखा, अखबार पढ़ा और चल दिए दिन में। ऐसे करने से मन की शक्ति बढ़ने वाली नहीं है, ये घट रही है और बहुत फास्ट घट रही है। और अगर आपने अनुभव किया हो, हम तो अनुभव कर रहे हैं कि ये कोविड के बाद ज्यादा घटी है, ये कोविड के बाद ज्यादा घटी है। कोविड के बाद छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, यहाँ कुछ हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि 2 साल सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता रोज क्रिएट की, हवा में फैल गई। कोविड तो ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन डर और चिंता नहीं खत्म हो रहा। लोगों को बिना किसी कारण के डर लग रहा है, बच्चों को बिना किसी कारण के डर लग रहा है, ये कोविड के बाद का रिजल्ट है, क्योंकि हमने उस 2 साल के अंदर बहुत डर चिंता क्रिएट की। तो इसलिए अपने आप को ये गिफ्ट दीजिए कि हर रोज आधा घंटा अपने आप के लिए रखिए, दिन की शुरुआत परमात्मा के महावाक्यों से। खुराक, जैसे जब हम घर से बाहर निकलते थे तो भले दिन में पता नहीं क्या खाते ना खाते, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते, कहते सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करके खाओ, फिर देखो दिन में कुछ भी करो। सुबह सुबह की खुराक सही होनी चाहिए, इसी तरह मन की भी सुबह सुबह की खुराक सही होनी चाहिए। और इसीलिए दिन की शुरुआत हम ज्ञान से करते हैं। तो 3 दिन पक्का यहाँ अच्छा ही लगा होगा, लेकिन आज आपको डिसीजन लेना है कि आप यहाँ सिर्फ अच्छा लगने के लिए आए थे या अच्छा बनने के लिए आए थे। कौन सा वाला? अच्छा बनने के लिए। 3 ऑप्शन होती है, अच्छा लगना, दूसरा है अच्छा बनना, और तीसरा है औरों को भी अच्छा बनाना। कौन सा वाला बनाना? तो जब दूसरा वाला लेंगे ना, तो तीसरा वाला अपने आप हो जाता है। जब हम अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को ऊपर उठाते जाते हैं, अपनी एनर्जी के अंदर शांति, शक्ति, प्यार भरते जाते हैं, आप एक चलता फिरता शक्ति स्तंभ बन जाएंगे, जिसको परमात्मा कहते लाइट हाउस, माइट हाउस। आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, आपके ऑरा, आपकी एनर्जी में इतनी पवित्रता है, इतनी शक्ति है कि लोगों को जीवन जीने का तरीका आ जाएगा, सही और गलत की परख आ जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को शक्ति मिलेगी जिससे वो अपनी बातों का सामना कर सकेंगे। तो इसलिए आज ये प्रतिज्ञा कीजिए, कल सुबह ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये लाइन को इसी हॉल में छोड़कर जाना, ये लाइन हमारा खुद खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा है जब हम कहते हैं समय नहीं है। है समय हमारे पास? है समय हमारे पास? ये लाइन ना वैसे भी कभी नहीं कहनी चाहिए। आपको पता है कौन कहता है समय नहीं है? कौन कहता है इनके पास समय नहीं है? कब कहा जाता है ये? पता है ना फिर क्यों कहते हैं वो वाली लाइन बार बार कि हमारे पास समय नहीं है? हाँ, ये लाइन सही नहीं होती है। सिर्फ कोई कह देता है, हम भी पढ़ लेते हैं, यही होता है मीडिया का संकरण। कोई करता है, कोई बनता है, कोई पढ़ता है, पढ़ लिया तो उसके बाद वो हमारी भाषा बन जाती है, भाई हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हमारे पास भरपूर समय है, समय को प्रायोरिटाइज करें और अपनी मन की स्थिति को उस पर सबसे पहला रखें, क्योंकि जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ स्थिति मजबूत होगी तो फिर हम दुनिया को सिर्फ समाचार नहीं, समाचार के साथ समाधान और शक्ति साथ साथ देंगे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ समाचार दिया तो आधी बात दी, उस समाचार का समाधान क्या है और उस समाधान को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति क्या है, वो आत्मा दे पाएगी जो उस समाधान और शक्ति को अपने जीवन में प्रयोग करती है। समाचार तो हम कहीं से सुन के देख के आर्टिकल बना के दे देते हैं, बट समाधान और शक्ति हम कहीं से सुन के पढ़ के नहीं कर सकते। उसको हमें रोज अपने अंदर अभ्यास करके लाकर सारे विश्व को ये सौगात देनी है। पिछले 2-3 दिन में आप देख रहे हैं पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है ना, पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ। तो जब पूरे विश्व की नजर भारत की तरफ है तो भारत को भी अपनी तरफ नजर करके अटेंशन रखकर कुछ परिवर्तन लाना होगा, तब भारत स्वर्णिम भारत बनकर सारे विश्व को मानसिक स्वास्थ्य, सुसाइड ऐसी चीजों का समाधान भारत दे सकता है, क्योंकि भारत के पास वो ज्ञान, वो योगा, वो प्राणायाम, वो सेवा भाव, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो कम्युनिटी लिविंग, वो संगठन, ये सारी बातें भारत के पास हैं। लेकिन भारत उनका प्रयोग करेगा तभी तो भारत उनको विश्व तक लेकर जाएगा। तो ये हमारी कार्मिक नैतिक जिम्मेवारी बनती है, उसका खुद प्रयोग करें, शक्ति स्तंभ बन जाए और फिर सारे विश्व को उस शक्ति दें। क्योंकि बाहर की दुनिया की शक्ति बहुत देशों के पास है, लेकिन जब मन की शक्ति की बात आती है तो भारत मजबूत है, भारत मजबूत है, क्योंकि हमारे पास वो संस्कृति है, वो संस्कृति है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति को छोड़ते हैं तो हम कमजोर होने लगते हैं, इसलिए वापस अपनी मर्यादाओं के पास वापस जाएंगे, अपनी संस्कृति के पास वापस जाएंगे और दिन की शुरुआत आध्यात्मिक अध्ययन, योग अभ्यास और फिर योगा प्राणायाम से करेंगे। आधा पौना घंटा अपने लिए रखेंगे और सारा दिन सबको सुख और शक्ति और सबकी सेवा करेंगे। यही हमें परमात्मा सिखाते हैं और यही परमात्मा कहते हैं कि दूसरों की सेवा करने से पहले पहले खुद की सेवा करो, तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। और जब हम सब ऐसे हो जाएंगे तो कलयुग से बदल कर सत्युग आ जाएगा, क्योंकि सत्युग देने वाला युग है। तो आप सब रेडी है ना सत्युग बनाने के लिए, रेडी ना सत्युग बनाने के लिए? तो ऐसे ये क्या होता है, मेरा कितना बिकेगा, मेरे व्यूज कितने आएंगे, मेरा कौन देखेगा, मेरे ना, ये ऐसे वाला है। और कर्म कहता है मैं सबको क्या दूं जिससे दूसरों की शक्ति और सुख बढ़े, भले उसमें शुरू में व्यूज कम आए, वो कम बिके, लेकिन मेरा कर्म सही होना चाहिए। चार शक्तियां हैं, धन, अन्न, मन और तन। सबसे पहली शक्ति जिससे भाग्य बनता है वो है धन। तो धन कभी अपने घर आना नहीं चाहिए जिस धन को कमाने में किसी को दर्द दिया हो। अगर मैंने कुछ ऐसा बनाया है, लिखा है, सुनाया है जिससे दूसरे का मन परेशान या अशांत होगा, तो वो धन मेरे घर दुआओं के साथ नहीं, किसी के दर्द के साथ आएगा और उस धन से फिर मेरी परवरिश, मेरे परिवार की परवरिश होगी। तो धन कितना आता है उससे ज्यादा जरूरी है धन कैसे आता है। लेकिन कलयुग में सबका ध्यान इसी पर है कि कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, कितना कमाते हो नहीं, कैसे कमाते हो। क्योंकि कितना कमाते हैं उससे तो सिर्फ सामान आता है, आप एक की जगह 10 चीजें हम खरीद सकते हैं। कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, उससे घर में सुकून और शक्ति आती है। तो भले सब लोग कितना कमा रहे हो, हम आज से अपना कर्म बदलते हैं कि हम कैसे कमा रहे हैं, दूसरों को सुकून और शक्ति देकर कमाएंगे तो अपने घर सुकून और शक्ति अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। तो कर्म पर थोड़ा सा अटेंशन रखें, संस्कारों को थोड़ा सा योग अभ्यास से करें और हम सब ने मिलकर स्वर्णिम भारत बनाना ही बनाना ही बनाना है। शुक्रिया। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी दीदी, आपने हमें जो टिप्स दिया है मैं समझती हूँ हम सब इस चीज को फॉलो करेंगे। शिवानी दीदी की यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक हम सब फॉलो करते हैं, वो एक सोशल मीडिया है, लेकिन उनकी बातों को हम अपने जीवन में फॉलो करें ये बहुत जरूरी है। वो हमेशा यही संदेश देते हैं, तो जिनका जीवन ही दूसरों के लिए है, संदेश है, ऐसे शिवानी दीदी का हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और दीदी ने जो हमें तीन बातें पक्की कराई हैं आज, मैं समझती हूँ हम सब शुरू करेंगे, करेंगे ना, तभी शिवानी दीदी हमारे बीच में आए वो सार्थक होगा, करेंगे ना सभी। दीदी से आप सभी ने प्रॉमिस किया है तो इस प्रॉमिस को फुलफिल जरूर करेंगे। अब मैं हमारे सत्र के अगले वक्ता भ्राता ओम्बे सिंह सयानी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी में आप सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और मीडिया जगत से आप जुड़े हैं। लंबे समय से आप इस क्षेत्र में अपने अनुभव से इस क्षेत्र को सजा रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए भ्राता ओम्बेर सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपनी समय सीमा में अपने विचारों को रखे। भ्राता ओम्बेर सिंह सयानी जी,
ओम शांति। ओम शांति। आज शिवानी दीदी का विचार सुनकर बोलने का भी कुछ मन नहीं हो रहा है, बस यही लग रहा है कि सुनते रहें उनके शब्दों को और अपने अंदर उतारते रहें। तीन दिन से यहाँ आने के बाद इस वातावरण के कारण जो परिवर्तन महसूस हो रहा है, यहाँ के कण कण में वो एनर्जी, वो शांति है जो अपने आप अपने अंदर उतर रही है और कुछ कहने के लिए आगे ऐसा मन नहीं करता है कोई जो कुछ बड़ा कहूँ। बस यही चाहता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो भी यहाँ से सीख कर जाऊँ थोड़ा उसको मैं अपने जीवन में उतारूँ और आगे मौका मिले उम्मीद करता हूँ जरूर आता रहूँगा। और इस कार्यक्रम में जाने के लिए मेरे मित्र डॉक्टर श्री गोपाल नारसन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने के बाद उन्होंने काफी अच्छे दिव्य अनुभूतियों से मेरा परिचय करवाया और जिनसे मिलकर अत्यंत खुशी हुई और अपने जीवन की मैं यहाँ इतना सार्थक समझता हूँ। धन्यवाद।
शुक्रिया भ्राता ओम्बेर सिंह सयानी जी। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं और वहाँ पर आप कार्य करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के हमारे इस सेशन के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह परमार जी। आप कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रायपुर छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद पर कार्य कर चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया जगत से जुड़े उसके साथ साथ आप न्याय क्षेत्र के साथ भी जुड़े, तो आपने दोनों क्षेत्र का बहुत अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किया है और एकेडमिक कैरियर आपका बहुत लंबा है, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे समापन सत्र में आप अपने विचार रखें, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर MS परमार जी।
शांति और सद्भाव के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और मीडिया की भूमिका। इस समापन समारोह की हमारे अतिथि सांसद कुलदीप शर्मा जी, आज के चेयरपर्सन डॉक्टर BK मृत्युंजय जी, हमारे इस पूरे 3 दिनी आयोजन के निदेशक कहिए, कर्ता धर्ता कहिए, या सब लोगों को बुलाने वाला कहिए, ऐसे भाई BK शांतनु जी, शिवानी बहन जा चुकी हैं, भाई ओमवीर सिंह, BK अमरचंद जी, और हमारे इंदौर से पधारे भाई आशीष गुप्ता जी, BK सरला जी, और आज की बहन जो संचालन कर रही है, तथा इस हॉल में बचे हुए विद्वज्जन, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गंभीर विषय है, और मैं अपनी बात की शुरुआत जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं और अन्य सभी भी आत्माएं ही हैं और हम सभी परम परमात्मा की संतानें हैं, तभी उसमें मानवीय मूल्य उभर पाते हैं, टिक पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये जो कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कर रहा है, ये विश्व में यूनिक किस्म का कार्य है, अनूठा कार्य है, और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। अब मेरी अपनी बात की शुरुआत करता हूं। हमारा देश बहुत, हमारी संस्कृति समृद्ध रही है। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठे चले गए होंगे, आजकल बहुत अंतर हो गया है। पत्रकारिता अलग होती है, कम्युनिकेशन अलग होता है, मीडिया की बात अलग होती है, मास कम्युनिकेशन अलग वर्ड है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अलग वर्ड है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अलग है। हम यहाँ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, जो खुद से और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और हम ये कह सकते हैं कि नारद जी जैसे पत्रकार रहे, संजय जी जैसे पत्रकार रहे, और इसके बाद में जब स्वतंत्रता नहीं मिली, गुलामी का समय था, आजादी के पहले की बात थी, तो पत्रकारिता का एक मिशन था कि हमको देश आजाद कराना है। मित्रों, उस पत्रकारिता के आदर्श को हम भविष्य की पत्रकारिता में अगर सोचकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अब यहाँ बहुत सारी बातें हुई, मीडिया क्या करेगा, मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु एक जब मैं पढ़ाता था तो एक एजेंडा सेटिंग मॉडल पढ़ाता था, कम्युनिकेशन का मॉडल था, उसमें ये बताता था कि भाई मीडिया जो एजेंडा सेट करता है वही चलता है। अभी शिवानी बहन ने बहुत अच्छी बातें कही कि आप अच्छे कंटेंट को देखिए। देखिए, रामायण और महाभारत जब दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, पूरे देश में कर्फ्यू लग जाता था, कर्फ्यू, एक भी रोड पर कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी नजर नहीं आती थी, तो क्या लोग अच्छा कंटेंट नहीं देखते थे, कोई अच्छा काम नहीं देखते थे? केवल और केवल, अभी एक सीरियल आता है पांचाल, उसकी 5 पत्नियां एक व्यक्ति की, आप भारत में क्या बताना चाहते हैं, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर एक पत्रकार, हड़बड़ाहट पत्रकार कहता हूं मैं इनको, वो पहले ही अपना एडिटोरियल निष्कर्ष सुना देते हैं, फिर एजेंडा सेट हो गया, फिर क्या बोलेंगे लोग? हमारे सांसद जी बैठे हुए हैं, जो इनके प्रवक्ता आते हैं पार्टियों के, एक दूसरे को मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं। क्या क्या बताना चाहते हैं आप देश को? आज G20 का सम्मेलन हो रहा है,
पूरे वर्ल्ड के लोग आए हुए हैं, तो हम हमारा यहाँ का जो सिस्टम है उसको सुधारना होगा और पत्रकारिता में कहीं ना कहीं शुचिता लाने के लिए तथ्य और सत्य, फैक्ट्स और ट्रुथ, दो ऐसे मानवीय मूल्य में पत्रकारिता का मानता हूं जो सारे पत्रकारों को उसको ध्यान में रखना चाहिए। मानवीय सरोकार और सामाजिक सरोकार पत्रकारिता में होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एक टीवी चैनल के पूरे दिन या 24 घंटे का कंटेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कहीं भी न्यूज है ही नहीं। पूरे 24 घंटे का कंटेंट देख लीजिए, कौन सी न्यूज है? समाचार ही नहीं उसमें। तो क्या करेंगे आप, कैसे काम करेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा कंटेंट अगर देंगे तो देखने वाले लोग हैं। और हमारे बच्चों पर, अभी बच्चों की बात हो रही थी, सोशल मीडिया का उपयोग वो तो हो रहा है, फायदा हो रहा है, परंतु नुकसान अधिक हो रहा है। हर बच्चे को चश्मा लग रहा है, हर बच्चा अधिकतर मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर लगा रहता है, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर, उसके अंदर पूरा गार्बेज भरा हुआ है, उसमें से आपको चुनना है कि क्या निकालना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलत सूचनाएं, फेक न्यूज, उल्टा सीधा वीडियो, फोटोग्राफ्स, न जाने क्या क्या उस पर दिया रहता, आप उसमें से ढूंढिए अपने काम का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लीजिए आप, प्रिंट मीडिया जरूर आज के समय में कुछ है, क्योंकि विश्वसनीयता अगर किसी माध्यम की है तो उसमें अखबार, समाचार पत्र पहले नंबर पर आता है। हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, समझते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं और 7 मिनट का समय मेरे पास है, इसलिए मैं यहाँ 2-3 बातें और आपको बताना चाहूंगा। इस देश में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक सबसे पहला मुद्दा ये है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और 15 में एक कार्यक्रम में वो आए थे, दिल्ली का ही कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और दूसरे लोगों से चर्चा की और ये कहा था कि इस देश में एक सेंट्रल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इस देश में कोई कम्युनिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 2015 की, आप देख सकते हैं, परंतु उस दिशा में कुछ हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अधिकारी भूल गए होंगे या माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना भूल गए होंगे। आप देखिए, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, बिना प्रशिक्षण के पत्रकार बन जाते हैं। एक अगर बार काउंसिल का वकील या डॉक्टर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही होती है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। और पत्रकारिता में कुछ भी कर दे, एक खबर देने से न जाने कितने लोग मारे जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं और उस पत्रकार के खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो उसमें विद्यार्थियों को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा, और मैं तो यहाँ शांतनु भाई को बोलूंगा कि उन विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बना करके कम से कम एक विषय, दो विषय उनको पढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में वो अच्छे पत्रकार बने, शिक्षित पत्रकार बने, पत्रकारिता को समझने वाले पत्रकार बने। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, कोई भी कुछ भी लिख देता है। सोशल मीडिया पे तो सब पत्रकार हैं हम। मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया ने आम आदमी को आवाज दी है, परंतु उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। तो पहला मुद्दा मुझे लगता है हमारे संकल्प पत्र में शायद ये शामिल ना हो, या कर पाए तो करें, क्योंकि मंच राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यहां से बात जाएगी तो सरकार तक पहुंचेगी। और हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, ये जरूर इस बात को लोकसभा में रखें कि इस देश में एक सेंट्रल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जहां पत्रकारिता के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं और उसमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत अच्छा रिसर्च हो, बहुत अच्छा एकेडमिक कार्य हो। एक मुद्दा ये इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा, इस देश में प्रेस काउंसिल को भंग कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उसकी कोई उपयोगिता इस देश में है ही नहीं। अगर कोई पत्रकार मुझे बता दे कि उपयोगिता है तो मैं मान लूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि उसकी जगह एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बने। मैं बहुत समय से बात कहता रहता हूं और ये बातें कई बार आई भी, यूपीए सरकार में भी आई थी, मोदी जी की सरकार में भी बात आई, पर ना तो नेता इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और ना पत्रकार बढ़ते हैं। ना जाने क्या इस तरह की कोई समस्या है, मैं बहुत कटु तरीके से बात बोल रहा हूं, पर ये देश हित में है, पत्रकारिता के हित में है, आध्यात्मिक शिक्षा के हित में, और जो भविष्य में पत्रकार बनेंगे उनके लिए भी ये बात आवश्यक है। तो मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बने और मीडिया शिक्षा को उसके अंतर्गत किया जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ की एजुकेशन को देखता है, मेडिकल एजुकेशन को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है, और यहां पत्रकारिता शिक्षा ऐसे छोटे छोटे कॉलेज इंस्टीट्यूट शुरू हो गए जिनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, डिप्लोमा दे रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं बच्चों का। तो ये दो तीन मुद्दे ऐसे हैं जो भविष्य की पत्रकारिता आध्यात्मिक शिक्षा देकर के और शांति, वैश्विक शांति, सद्भाव की भावना हमको पैदा करना है, तो भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उसको आध्यात्मिक शिक्षा देना होगा, उसको शांति और स्वभाव के शांति और सद्भाव के लिए काम करने के लिए प्रेरणा देना होगा, और ये काम इसका उत्प्रेरक उसका आगे बढ़ने का काम मुझे लगता है कि यहाँ के सारे पत्रकार और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जब कभी कहीं किसी से बात हो तो इस संबंध में हम चर्चा करें, और कि केंद्रीय पत्रकारिता या कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी और मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश की आवश्यकता है। यहाँ जितने पत्रकार बैठे हैं मुझे लगता है सब मेरी बात से सहमत होंगे कि मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बनना चाहिए, और वो क्यों बनना चाहिए मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ब्रॉडकास्टर्स एडिटर्स एसोसिएशन है, वो अपनी मर्जी से उन्होंने कुछ आचार संहिता बना ली है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी दिखाता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो केवल प्रिंट मीडिया के लिए है। सोशल मीडिया पर कुछ भी चल रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल नहीं है। पत्रकारिता में मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, पर नियमन होना चाहिए, स्वनियमन होना चाहिए। जो मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बने उसमें ज्यादा से ज्यादा पत्रकारिता के, कम्युनिकेशन के, विज्ञापन के, जनसंपर्क क्षेत्र के लोगों को लिए जाए, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में वही संचालित करे, किसी बाहरी व्यक्ति को ना दे, परंतु ये बहुत आवश्यकता है। मित्रों बहुत अच्छा लगा, दो दिन तीन दिन हम साथ में रहे, मैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा और मीडिया शिक्षक भी रहा, तो मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं कि मीडिया शिक्षा में कैसे गुणवत्ता लाई जाए, कैसे अच्छा काम किया जाए, और मैंने अपने जीवन भर यही काम किया है। कम से कम 50 संपादक पूरे देश में मेरे विद्यार्थी हैं, बड़े बड़े चैनलों में, राष्ट्रीय चैनलों में, अखबारों में, विज्ञापन एजेंसियों में, मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और मैं जब तक हूं तब तक मेरा ध्येय है कि इस दिशा में गुणवत्ता की दृष्टि में अच्छे काम के करने के फील्ड में कुछ अगर मीडिया मूल्यों की बात, मानवीय मूल्यों की बात, सामाजिक सरोकारों की बात, लोक मंगलकारी पत्रकारिता की ओर बढ़ने की दिशा में अगर हम बढ़ेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा, और विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह परमार जी, आपने बहुत सुंदर बात रखी कि मीडिया के अंदर मूल्यों की कुछ एकेडमिक बात होनी चाहिए। आपको बताते हुए मुझे खुशी और हर्ष हो रही है कि जैसे हमारा मीडिया प्रभाग है वैसे हमारा शिक्षा प्रभाग है, और पिछले 13 वर्षों से भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटी में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता के अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, और अभी फिलहाल हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी में PhD भी मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता को लेकर हमने शुरू किया है। तो पिछले 13 वर्ष से ब्रह्मा कुमारीज ने भारत की विभिन्न 14 से 15 यूनिवर्सिटी के साथ MOU करके मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता के कोर्स को आगे शुरू किया है, और भारत और विदेशों के करीब 7-8 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस शिक्षा का लाभ लिया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अगले वक्ता भ्रता आशीष गुप्ता जी, आप इंदौर से हमारे मध्य पहुंचे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रेडियो सरगम 90.8 FM में आप कार्यरत हैं। आप इसे पूर्व समाचार पत्र पंचायत जनचर्चा के संपादक रह चुके हैं, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष आपकी भूमिका रही हुई है, वर्तमान समय आप RSS से भी जुड़े हुए हैं, पूर्व में आप प्रसिद्ध TV चैनल साधना टीवी चैनल, आईबीएन 7 चैनल, वॉइस ऑफ इंडिया चैनल जैसे कई मीडिया प्रतिष्ठानों में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हुई है। करीब 18 वर्ष से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग से आप जुड़े हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप स्टेट कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता आशीष गुप्ता जी को कि वो अपने विचार हमारे बीच रखें। भ्राता आशीष गुप्ता जी,
शांति, जोर से बोलिए ओम शांति। आज के इस सार्थक मीडिया सम्मेलन के लिए सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की आयोजकों को सर्वप्रथम बधाइयां, शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान संस्थान के वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक ब्रह्म कुमार मृत्युंजय भाई साहब, आपको सादर प्रणाम। हमारे बीच में पत्रकारों के बीच अपने अमूल्य समय को निकालकर हम सबके बीच में उपस्थित हुई ऐसी ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी जी को, जिन्होंने हमें बहुत आज अच्छे से एक बहुत अच्छी प्रेरणाप्रद बातें बताई, इसके लिए शिवानी दीदी जी को भी दिल की गहराइयों से बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में इंदौर से पधारे हैं हमारे पत्रकारिता के शिक्षक भी रहे कुशाभाव ठाकरे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय मान सिंह जी परमार साहब, हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर सरला दीदी जी, ओमवीर सिंह जी, हमारे ब्रह्म कुमार अमरचंद भाई जी, और आज हमें राजयोग का जो अभ्यास कराएंगी ब्रह्म कुमारी विजया दीदी जी, और इस कार्यक्रम को कुशल और प्रभावी संचालन कर रही ऐसी हमारी सदैव हसमुख चित्त रहने वाली नंदिनी दीदी जी, और विशेष इस पूरे कार्यक्रम को कुशल रूप से जो संचालित किया, मैनेजमेंट किया, सभी पत्रकार साथियों का ध्यान रखा, और पूरे कार्यक्रम की जो बिग बोन, जो कहना चाहिए जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शांतनु भाई जी, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया। शांतनु भाई के लिए भी 1,000-2,000 तालियां बजाएं। जैसा कि आज विषय मिला है कि शांति और सद्भाव के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और मीडिया की भूमिका, अक्सर हम देखते हैं, समझते हैं कि जनरली लोग धर्म और अध्यात्म को अलग रखने का आजकल एक फैशन सा चला गया है, कि किसी भी चीज में हम जब धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं तो बड़ा संकोचित विचारधाराएं सामने आती हैं। लेकिन जिस तेज गति से अपना इंडिया भारत की ओर जा रहा है या वास्तविक भारत बनने जा रहा है, तो वो भारत बनने की जो वास्तविक भूमिका है वो अध्यात्म और धर्म ही है, जिसने हमारे देश को पूरे विश्व का गुरु बनाया। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में अपने प्रयास तेज किए हैं। लेकिन इस प्रयास में, जैसे अभी G20 का कार्यक्रम संपन्न हुआ सफलतापूर्वक, इस सफलता के पीछे भारत देश की, हमारी सकारात्मक मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है पूरे विश्व में हमारे देश को ऊंचा उठाने में या उसको प्रचारित करने में। तो कहीं ना कहीं शांति और सद्भाव के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कार्य करने में हमारे देश की भूमिका, हमारे देश की मीडिया बहुत बखूबी भूमिका निभा रही है। हमारे बीच में अंडमान निकोबार के माननीय सांसद जी कुलदीप राय शर्मा जी बैठे हैं और वो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं और निश्चित रूप से आज वो यहां पर आए हैं इस कार्यक्रम में। मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके और उनके अंदर भी एक आध्यात्मिक भावनाओं को मैंने देखा है और उनका भी शायद मानना यही है कि राजनीति में एक अच्छी आध्यात्मिक शक्तियों की जरूरत है। तो पत्रकारिता को करने के लिए अध्यात्म अति आवश्यक विषय वस्तु है। अध्यात्म के बिना हम अपनी कलम को वो धार नहीं दे सकते। अध्यात्म की शक्तियों के बिना हम अपने अंदर की उस चेतना को जागृत नहीं कर सकते। जितने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं, भले समाज क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, यदि हम उनकी पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो कहीं न कहीं उन्होंने अध्यात्म से ही प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल किया है। तो अध्यात्म की आवश्यकता तो आज के दौर में प्रत्येक क्षेत्र में है। हम चाहे विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ जाएं, हम कहीं भी बढ़ जाएं, लेकिन अध्यात्म हमारे जीवन में एक अनिवार्य विषय वस्तु होना चाहिए। हमारे एक उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे इस देश के सबसे स्वच्छ शहर जहां से मैं आता हूं इंदौर नगरी, आपको पता होगा कि स्वच्छता में हम छठी बार नंबर वन आए हैं पूरे देश में। और शिवानी दीदी पिछली बार आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप स्वच्छता में यदि नंबर वन है तो आप मानसिक विचारों में भी स्वच्छता में नंबर वन आने का प्रयास करें। तो हमने उनकी इस बात को स्वीकार किया और हमने कहा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे मृत्युंजय भाई साहब और करुणा भाई साहब भी इंदौर आते रहते हैं और ये भी हमें हमेशा यही प्रेरणा देते हैं कि जैसा आपका शहर स्वच्छ है, क्यों ना पत्रकारिता की स्वच्छता की शुरुआत भी आप इंदौर से ही कर दें। तो मैं इस मंच के माध्यम से, भाई साहब आपकी गरिमामय उपस्थिति है तो हर बात में वजन है, गरिमा है, तो यहां से मैं चाहता हूं कि आगामी जनवरी माह में यदि आपका आदेश हो और हमारे मीडिया विंग के करुणा भाई साहब जी का आदेश हो तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम इंदौर के अंदर स्वच्छता के अभियान के साथ एफएम रेडियो इंदौर की ओर से हम नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित रहेंगे और वो मादा वो शक्ति यदि आप जैसे सकारात्मक सकाश देने वाली हस्तियां हमारे बीच में आएंगी तो पत्रकारिता के इतिहास में इंदौर का एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। परमार साहब बैठे हैं, साक्षी हैं वो कि इंदौर पत्रकारिता की जगत में एक दीप्यमान नाम है। तो क्यों ना हम इस दिशा में एक सार्थक प्रयास करें और देश के दिल मध्य प्रदेश के इंदौर से हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। मैं सभी को अपनी बात यही विराम करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी अपनी सारी बात आप सब मेरे पत्रकार साथी इंदौर पधारे, मैं आपका बहुत शानदार देवी अहिल्या की नगरी में स्वागत करूंगा और आप सभी को मालवा की माटी की सुगंध से परिचित कराऊंगा। हमारे पत्रकारिता के बड़े बड़े स्तंभ वहां पर मौजूद होंगे और ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान को, बाप दादा के उस अमूल्य वचनों को लेकर जो बहने जाती हैं, जो हमारे वरिष्ठ भाई लोग जाते हैं, यदि इनकी उपस्थिति हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास सफल रहेगा। इसी भावनाओं के साथ आप सभी को निमंत्रण देते हुए आपने मुझे यहाँ बुलाया, संस्था ने मेरा सम्मान किया उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत की, भारत माता की, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता आशीष गुप्ता जी, आपने सभी को आमंत्रित किया है और विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी को सादर निमंत्रण दिया है, तो उसके लिए भी आपका हम धन्यवाद करते हैं। जब त्रिदिवसीय यह सम्मेलन मीडिया का पूरे देश और विदेश के पत्रकार जगत से जुड़े हुए महानुभावों की उपस्थिति इस मुख्यालय में रही है, तो आज के इस समापन सत्र में आओ हम सब मिलकर के कुछ संकल्पबद्ध बने, कुछ संकल्प पत्र पढ़े, कुछ कार्य योजना बनाए और उसको कार्यान्वित करने के लिए हम सभी एकजुट करके प्रयास करें। तो कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी बी के सरला आनंद जी को। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है मीडिया प्रभाग से और हैदराबाद से हमारे बीच पहुंचे हैं। उससे पूर्व आप पब्लिक सर्विस रिलेशन और एचआरडी मैनेजर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में आपने अपनी सेवाएं दी है। आप भेल मैगजीन में भी कई सदियों से अपने अपनी एडिटर पद पर सेवाएं दी है। नेशनल प्रेसिडेंट गुजरात, अच्छा ठीक है, हमारे बीच हमारे अंदमान निकोबार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हमारे भ्राता कुलदीप राय शर्मा जी है, उनको मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो आप आएंगे और अपने मुख्य अतिथि के रूप में आप अपने विचार रखेंगे। अंदमान निकोबार भारत देश के बहुत समीप ये द्वीप समूह है, वहां से आप आए हैं, तो आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ भ्राता कुलदीप राय शर्मा जी।
मंच पे विराजमान परम आदरणीय हमारे बीच उपस्थित जो ब्रह्मकुमारी के जो एजुकेशन विंग हैं, उनके चेयरपर्सन मृत्युंजय जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी बहन सरला जी को जिन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे आने का। और आकर के पिछले दो दिन के अंदर में बहुत कुछ जानने का, सीखने का, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स आपको देना चाहूंगा कि रियली मैं अपने आप को धन्य मानता हूं यहां आकर। साथ ही हमारे बीच में जो उपस्थित हैं ओमवीर सिंह जी, बहन शिवानी जी चली गई यहां से, प्रोफेसर परमार जी और जितने भी हमारे यहाँ पे विशेष अतिथि जो हैं जिन्होंने इस मीडिया के जो कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। देखिए मैं एक बहुत दूर दराज एरिया से आता हूँ जो हिंदुस्तान का एक बहुत दूर दराज एरिया है और जिसका नाम अंडमान निकोबार है, वो अपने आप में एक लघु भारत, मिनी भारत है। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी के जितने भी इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक जो टॉपिक आप लोगों ने आज चुना है कि स्पिरिचुअल विजडम फॉर पीस एंड हार्मनी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत अलग टॉपिक है। जनरली इस तरीके का टॉपिक हम लोगों को जो सेमिनार्स में सुनने को नहीं मिलता, बहुत तरह का प्रोफेशनल टॉपिक्स के ऊपर बात होता है, धर्म के ऊपर बात होता है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बात होता है, बट रियल सेंस में आज जो दुनिया के अंदर एक होड़ चला है, जो मानवता के अंदर में इंसान इंसान को नहीं पहचानता, लोग सब भाग रहे हैं पर उनको नहीं पता वो कहां भाग रहे हैं। देखिए इंसान का जीवन में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहन शिवानी ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया कि बेसिकली आज का जो मीडिया है, आज से जो 20 साल 25 साल पहले का मीडिया और आज के मीडिया के बीच में बहन शिवानी ने एक बहुत बड़ा एक अंतर बताया। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, देखिए ये बात सही है, 100% सही है कि आज इंसान को अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया बदल सकता है। और आज दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकत है, अगर हम वेपन का बात करें तो हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन का बात करते हैं, जिससे बड़ा कोई वेपन नहीं है आज के दिन में, बट न्यूक्लियर वेपन से भी बहुत बड़ा वेपन है मीडिया। क्योंकि मीडिया एक ऐसा चीज है, न्यूक्लियर वेपन ऐसा है कि भाई आप एक टारगेट फिक्स करते हैं, उस टारगेट को एम करके आप वहां पे उसको बम को डालते हैं जिससे जो डैमेज होता है अलग बात है, बट ये मीडिया का जो वेपन है ये हर इंसान का बाथरूम से लेके बेडरूम से लेके ड्राइंग रूम से लेके किचन तक का वो पहुंच गया है और वो जब चाहे जैसा चाहे किसी का भी सोच को बदल सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा मैं अंडमान निकोबार से आता हूं, जब 2004 में सुनामी आया था, यकीन मानिएगा अंडमान निकोबार जैसा बहुत बड़ा 700 किलोमीटर का आइलैंड है, 800 से ज्यादा द्वीप है, अलग अलग टापू, अलग अलग दूर दराज एरिया था, ठीक है, जो दूर दूर का एरिया था जहां पर सुनामी आया था, स्पेशली जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, डेड बॉडी इतना सारा जगह जगह पे डेड बॉडी पड़ा था, लोगों के पास कुछ साधन नहीं था, ना खाना था ना कपड़ा था ना घर था, लोग सिर्फ भाग रहे थे, जंगल के अंदर भाग रहे थे। बट यकीन मानिएगा जब वो भागे थे वहां से, कोई भी इंसान पैसा लेके नहीं भागा था, कोई भी इंसान कपड़ा लेके नहीं भागा था, सिर्फ और सिर्फ हर इंसान के पास में जिसके पास में जो साधन था वो जो उनके पास में छोटा सा ट्रांजिस्टर था, एक ट्रांजिस्टर को लेके वो भागे थे और वो ट्रांजिस्टर के द्वारा ही जो मेन पोर्टलर था जो वहां से जो भी ब्रॉडकास्ट होता था, कि क्योंकि वहां पे ऐसा हो गया था कि कई आइलैंड भी नहीं दिख रहे थे, लोगों का तो बात आप छोड़ दीजिए, आइलैंड का आइलैंड गैप हो गया था, नहीं दिख रहा था, तो बिल्कुल भी संपर्क हमारा टूट गया था। मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर वो साथ लेके भागे थे अपने साथ में, जंगल के अंदर में भागे थे, और जब ट्रांजिस्टर में जो ब्रॉडकास्ट होता था न्यूज के द्वारा, स्पेशल बुलेटिन के द्वारा, कि अभी अभी आपके पास में जहाज आ रहा है, आपके पास में हेलीकॉप्टर आ रहा है, ये एरिया में हेलीकॉप्टर अभी खाना ड्रॉप करेगा, आप यहां से खाना उठा सकते हैं ले सकते हैं, यहां पे कपड़ा ड्रॉप करेगा, यहां पे दवाइयां ड्रॉप करेगा, तो लोग इस मीडिया के साधन के द्वारा ही अपने आप को लोग बचा पाए थे और हजारों की तादाद में लोगों ने अपना आपको बचाया। तो मीडिया इज सो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कि ये हम लोगों को इसका ताकत, एक छोटा सा जगह सुनामी के द्वारा मैं एग्जांपल आपको मैं देकर इस चीज को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ देखिए आज वो समय आ गया जो हमारे परमार साहब ने कहा, रियल सेंस में मीडिया को अब चिंतन करने का समय आ गया है, क्योंकि आज लोग अपना स्वार्थ के कारण अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल गेन करने के लिए, सोशली गेन करने के लिए, पोजीशन गेन करने के लिए, लोग कुछ भी चाहे जो दिल में आया वो करते हैं, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके किसी को के बारे में बुरा लिखना, तो देर हैज टू बी ए सिस्टम इन प्लेस जो इस मैकेनिज्म को चेक करे, हाई टाइम, नहीं तो जिस तरीके का जो आज संस्कार मीडिया में चल रहा है, आने वाला समय ये देश के हित में, समाज के हित में, जनता के हित में नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए जैसा हम लोग जब हम छोटे थे तो एक ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा करता था, जब से मेरा ये मानना है कि जब से न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आया है तो हम लोग आपस से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर एक फैमिली हस्बैंड वाइफ दो बच्चे या उनके पेरेंट्स अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने भी, तो पहले क्या होता था, जाते थे तो आपस में बैठ के बात करते थे, मगर आज खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते तो है बट जाके चारों अपने अपने फोन में अपने मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है कि आपस में बैठ के कम से कम थोड़ा बात कर ले। तो मीडिया इस हद तक इंसान का माइंड को करप कर दिया है, इतना इस हद तक वो कैप्चर कर लिया है कि वी हैव टू रीथिंक अबाउट द मीडिया कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से एक पॉजिटिव वे में मीडिया को हम लोग इसका इस्तेमाल करें। जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल के अंदर में आपका ये क्लासेस हुआ करता था कि जिस तरीके से संस्कार कैसे होने चाहिए, मॉरल साइंस के क्लासेस हुआ करता था। आज वो सब चीज हमारे बीच में नहीं है कि आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बट सिर्फ पढ़ाई ही इंसान को आगे जरूर फाइनेंशियली आपको वो बेनिफिट दे सकता है, बट फिजिकली और मेंटली वो आपको कभी स्ट्रांग नहीं बना सकता। तो मैं जो रोल आज ब्रह्म कुमारी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा एक नया सोच लोग के अंदर में, देश के अंदर में, कि मीडिया को किस तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जाए और किस तरीके से इंसान का जो मेंटल स्टेट है वो मेंटल स्टेट को वो चेंज करे, ताकि आने वाला समय कोई भी इंसान एक अच्छा नागरिक बन सकता है। और खासतौर पे मैं ये तो ये मीडिया के काफी हमारे साथी यहाँ पे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आज हम लोगों को जो स्पेशल जो एम्फेसाइज करना है वो है हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उनके ऊपर हमको ज्यादा काम करना है। क्योंकि देखिए आज समय किसी के पास नहीं है। आज हम न्यूज का बात करते हैं, ठीक है, न्यूज भी अगर आप एक इंसान बैठने को देखता है तो आधा घंटे का न्यूज होता है। प्रिंट मीडिया तो बहुत ही कम हो गया, लोग बहुत ही कम लोग आज प्रिंट मीडिया को पढ़ते हैं। बेसिकली लोग पसंद करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा वो न्यूज सुने, मगर आज उससे भी एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि आज वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के इंसान अपना आपको अपना टाइम को सेव करता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट मीडिया लाए कि जो रील्स वगैरह आज काफी फेमस है नौजवान पीढ़ियों के अंदर में, तो रील्स वगैरह लाए, रील्स के द्वारा मैसेज दे, और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं हम लोग आज से उनको हम कुछ तरह से एक ट्रेनिंग दे, एक तरह से उनका माइंडसेट तैयार करें कि एक फिजिकल हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड किस तरीके से हम एक बच्चों का बना सकते हैं, ताकि जब वो बच्चे आगे जब जाके एक देश का अच्छा नागरिक बनेंगे तो एक चेन रिएक्शन हमारा होगा और उस तरीके का हमारा देश, हमारा समाज चलेगा, जिससे एक पॉजिटिविटी हर तरफ में होगा और देश में खुशहाली होगा, लोगों के परिवार में खुशहाली होगा, लोग इंडिविजुअल लेवल में लोग खुश होंगे, और जब वो खुद अपने इंडिविजुअल लेवल में खुश होंगे तो ये बट नेचुरल है कि उसका जो भी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग को वो हमेशा एक अच्छा वातावरण में वर्किंग और उसके आसपास के लोग खुश होंगे। मैं पुनः मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस तरीके का एक पावन जगह, एक बहुत ही पाक और नेक जगह में आके बहुत कुछ मैं सीख के यहाँ जा रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में ये सभी चीज को अपने जीवन में लाऊं, ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता कुलदीप राय शर्मा जी, आप इतने दूर से हमारे बीच माउंट आबू आए और आपने अपने विचारों को यहाँ हमारे मध्य रखा, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे आज के इस सत्र के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। आप हमारी शिक्षा प्रभाग के चेयरपर्सन हैं और ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। आप शिक्षा प्रभाग के अंदर पिछले 30 सालों से विभिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेजों में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता के पाठ्यक्रमों को एंकरेज करने, मोटिवेट करने और उसको चलाने के लिए आप निमित्त है। क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है उसके आप डायरेक्टर हैं, और लिविंग वैल्यूज जो हमारा एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पूरे विश्व भर में चल रहा है उसके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। आपकी अध्यक्षता में कई टेलीफिल्म का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा कुमारी संस्था के सारे विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो ऐसी महान विभूति को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आदरणीय भ्राता जी आज के हमारे सत्र में हमें अपने विचारों से लाभान्वित करें। परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी।
शांति। मैं आप सबका पेशेंस का परीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि सभी चेयर खाली हो गया है और सोफा थोड़ा बैठा हुआ है। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, कम से कम थोड़े लोग बैठे हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारा आदरणीय शांतनु और उनके साथ ही करुणा भाई सबको, क्योंकि समय प्रति समय मीडिया की कॉन्फ्रेंस इधर आयोजन करते हैं और उसका फल भी हम देखते हूँ बहुत अच्छे होता है। परंतु आप सबको मीडिया वर्ग का भाई बहनों को विशेष करके मॉडर्न नारद में कहता हूँ, पर परमार साहब ये बात को स्वीकार करके अपनी वक्तव्य में कहा, मॉडर्न नारद है और मॉडर्न संजय भी है। महाभारत में संजय तो युद्ध में क्या क्या हो रहा है उसका गति को सुना रहा था, परंतु उससे बढ़कर के इस साल अभी हमने देखा होगा हमारे विज्ञानी लोग साइंटिस्ट लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं। उधर से उन्होंने टाइम फिक्स किया था 6:04 में उसका लैंडिंग होगा। मैं समझता हूँ उसका अद्भुत सीन हम सभी ने टेलीविजन के माध्यम द्वारा देखा, एग्जैक्टली उसको 6:04 में लैंडिंग हुआ। ये अद्भुत है, महाभारत की से भी बड़ी अद्भुत है। इस कारण से भारत का महिमा और भी देश में विदेश में विश्व में एक वैज्ञानिक अचीवमेंट का हमने सीखा। परंतु इतना करने के बाद में हम लोगों को मेंटल कंट्रोलिंग पावर कम हो गया। अभी तो अभी भी लोगों के अंदर गलत संकल्प, पाप संकल्प, नीच संकल्प, दुष्संकल्प, दूसरों को गिराने के संकल्प, इस प्रकार की सोच जो है उसका कंट्रोलिंग पावर नहीं। क्यों? उसकी हमारा मैकेनिज्म भूल गया, उसकी शिक्षा भूल गया, उसका अंडरस्टैंडिंग भूल गया, उसका प्रभाव क्या समाज में, व्यक्ति में, बच्चों में, प्रकृति में, पर्यावरण में क्या होता है उसके बारे में हमको सोच भी नहीं है बहुत लोगों को। इसके परिणाम ही कलयुग है, इसका परिणाम कलयुग या करुणयुग को वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है। परंतु ऐसी समय पर बहुत हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको चेंज करके एक स्वर्णिम युग की तरफ ले जाना। उसके लिए आध्यात्मिक तक सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं बताता हमारे पास सब प्रकार की यूनिवर्सिटीज है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनिमल यूनिवर्सिटी, म्यूजिक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। मीडिया का भी यूनिवर्सिटी है, परंतु उसका कंट्रोल एंड रेगुलेटर नहीं है। इसके लिए मैं परमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने जो सुझाव दिया मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर एक नोट बना के दें, हम उसको पूरा मदद करेंगे। और क्योंकि मीडिया आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भले हम तो फोर्थ पिलर भी कहते हैं, परंतु आज पिलर सभी लड़खड़ा रहे हैं। पॉलिटिकल पिलर हो, इकोनॉमिक परिस्थिति हो, सभी पिलर्स लड़खड़ा रहे हैं। कब गिर जाएगा, कौन गिर जाएगा, कौन सी पार्टी गिरेगा, इसका उनकी गिरावट से देश का प्रकृति का पर्यावरण का भी हो रहा है। परंतु हमारा देश इस समय में थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है और उसके लिए खुशी की बात है। परंतु वो स्पीड को, वो गति को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ प्रोग्रेस देने के लिए उसको और भी थोड़ा स्पिरिचुअलाइजेशन की तरह, हमने मॉरलाइजेशन नहीं किया, स्पिरिचुअलाइजेशन नहीं किया, ह्यूमनाइजेशन नहीं किया, एंड ओनली मॉनिटरी बेनिफिट और पब्लिसिटी आदि विषय पर अधिक अटेंशन दिया उसको। इसको रेगुलेट करने के लिए हमको ऐसी एक विधि चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को लाने के लिए बेसिकली वैल्यू एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतना ही कहेंगे, ऐसी वैल्यू एजुकेशन अर्थात अपना माइंड को शक्तिशाली बनावे, अपने संकल्पों को व्यर्थ से मुक्त करें, अपने दुष्कर्म, पाप कर्म, नीच कर्म और अशांति फैलाने के कर्म जो हम करते आए उसको समाप्त करें और एक एक व्यक्ति को एक लाइट हाउस एंड माइट हाउस बनाए, एक एक व्यक्ति को शांति दूत बनाए, एक एक आत्मा को फरिश्ता बनाए, एक एक आत्मा को प्रेरणा स्रोत बनाए। ऐसी बनाने के हमारे पास शिक्षा होना चाहिए, परंतु वो शिक्षा को हम लोग भूल ही गया, उसको किताब में रह गया, मंदिरों में रह गया, मस्जिद में रह गया, गिरजाघर में रह गया, जीवन से दूर कोस दूर हो गया। इसके लिए वी नोट नीड न्यूक्लियर पावर, परंतु न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस की आवश्यकता है। न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस का कैसे क्रिएट किया जाए उसके लिए भी योग भी चाहिए, साधना भी चाहिए और इस साधना के माध्यम द्वारा इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया है, बाबा ने बनाया और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सक्सेस जो आप देख रहे हैं उसी कारण। इसके लिए सभी नारद मुनियों को, सभी महर्षियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ में विशेष करके हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत दूर से आए हैं उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, परंतु धन्यवाद देने का और भी कार्यक्रम है, एक रेजोल्यूशन भी है, वो सभी पढ़ेंगे, आप सबको उसको सेकंड करना। परंतु इतने ही कहकर के मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते, ओम शांति।
मृत्युंजय भाई जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। अभी आगामी 15 दिनों के बाद यहाँ एक ग्लोबल समिट होने जाने वाली है, उसके सारी आयोजन की जिम्मेदारी भी आपकी है। फिर भी अपने समय निकाल करके आज के हमारे समापन सत्र में पधारे, तो भाई साहब का हम तहे दिल से मीडिया प्रभाग की ओर से धन्यवाद करते हैं। अभी मीडिया प्रभाग के द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन का इस वैलिडिक्ट्री सेशन में हम यहाँ कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संकल्प पत्र पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बहन ब्रह्मा कुमारी सरला आनंद जी को, हैदराबाद से हमारे बीच है और आप मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, बहन सरला आनंद जी।
ओम शांति। पिछले 3 दिनों से इस मीडिया महासम्मेलन में 13 सेशंस इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ है, उसमें 5 मेडिटेशन सेशंस थे, 2 इनसाइट सेशंस थे, 2 प्लेनरी सेशंस ऑन रेस्ट सीरियस सेशंस थे। इन 13 सेशंस में बहुत अच्छे अच्छे वक्ताएं देश के कोने कोने से आकर अपने अनुभव के आधारित उनके वक्तव्य हमारे समक्ष रखे थे और सूचनाएं भी दिए थे। जैसे अभी अभी परमार जी बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है और हमारा समक्ष हमारे एमपी भाई जी हैं कुलदीप राय शर्मा जी, ही सेड ही वुड टेक इट टू द पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट दिस इश्यू इन द पार्लियामेंट, फॉर दैट धन्यवाद करती हूँ। मंच पर उपस्थित माननीय आदरणीय एमपी भाई जी कुलदीप राय शर्मा जी, परमार जी, अमरचंद भाई जी, राजयोगिनी विजया बहन जी, साईनी भाई जी, हमारी प्यारी बहन नंदनी जी एंड ऑल माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, नाउ वी आर ट्राइंग टू present to you the action plan which is arrived based on the different opinions, views and suggestions expressed in the conference. तो उसको लेते हुए हम इस action plan को बनाया है, एक 6-7 point का action plan है, तो मैं आपको एक्शन प्लान पढ़ूंगी, आप उसको, आप सब मिलके उसको सेकंड करेंगे। इसमें खास 3 वक्तव्य को सेकंड करने के लिए कहेंगे बाद में, तो पहले मैं एक्शन प्लान कम कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन जो हमने इस महासम्मेलन में बनाया हुआ है उसको आप मैं पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। Brahma Kumaris have organized a 5-day national media conference on the theme Empowered Media for Global Peace and Harmony from 8th of September to 12th of September 2023. Organized in association with Raj Yoga Education and Research Foundation, this conference was held in a very poised and precinct, Brahma Kumari's Shantivan complex, located at Palhati, Rajasthan. More than 1,500 media professionals representing print, electronic, digital, social media, as well as media consultants, academicians, and public relations professionals have participated in this conference to benefit personally and update professionally. In this conference, expert speakers in both media and spiritual disciplines have very effectively conducted 13 different sessions, including 2 insight sessions, 5 meditation sessions, and 2 plenary sessions on the topics of impact of social media on society, peace journalism for global harmony, need for ethical balance in media, spiritual wisdom for peace and harmony, the role of media, apart from the inaugural session on the conference theme. The conference also adopted the following resolutions for your adherence. First point, the duty of media is not merely to report the news but to take the onus of paying attention to understand the self and working towards ethical balance in bringing about peace in the world. The second point, the purpose of media is to serve the information needs of the nation and to play the role of a watchdog for society in bringing amity and harmony. The third point, the media wing of Brahma Kumaris will continue to strive towards supporting and empowering media professionals in fulfilling the objective of peace journalism for global harmony. Fourth point, to take inspiration from the high-level success of G20 summit hosted by Bharat and endeavor to shape the world opinion towards peace, the Bharat way. A fifth point, to assist the personnel of local, regional and national media in empowering themselves spiritually such that they can ably dedicate themselves to the welfare and happiness of our society. Sixth point, to ensure that the media is empowered to perform its role truthfully and without bias. It is resolved to choose peace is the need of the hour to improve society and comfort humanity. This is the objective we have really aimed at. Last point, as social media is growing rapidly, it is resolved that it shall self-regulate and conduct itself responsibly towards the maintenance of cordial human relations within the society by dissuading misinformation and disinformation. So this is the resolution what we have arrived at in this national media conference. Now, this has to be as a formality to be seconded by 3 important figures who are involved in making this. I would request Brother Avai Babji, former Secretary General of Public Relations Society of India, to please second it.
Dignitaries on the dais, media friends, beloved brothers and sisters of Brahma Kumaris, I am privileged to second the action plan proposed by Sister Sarala Anand and second all the conference resolutions for adoption by this august house. Thank you very much. Jai Bharat.
Thank you, Brother Vai Balaji. अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस रेजोल्यूशन को अनुमोदन करने के लिए ब्रदर महादेव स्वामी, मैनेजिंग डायरेक्टर जानकी टीवी मैसूर, और साथ साथ में डॉक्टर कमलेश मीना, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नो भागलपुर, आप दोनों को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज कम ऑन स्टेज।
ओम शांति। आज वैश्विक शांति एवं सद्भाव के लिए सशक्त मीडिया विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए इस संकल्प पत्र को पारित एंडोर्स करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति बड़ा आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय का रेजोल्यूशन पारित कराने के लिए एज एंडोर्समेंट के रूप में आपने मुझे मौका दिया। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पारित यह संकल्प पत्र जो हम सब के लिए कहीं कहीं आज के समय की जरूरत है उसको पारित करने का संकल्प लेते हैं, और आप सबके समर्थन के माध्यम से मैं परम श्रद्धे हमारे आज के चीफ गेस्ट कमल राय शर्मा साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि प्रोफेसर मानसिंह परमार साहब ने जो एक पॉइंट बड़ा दो पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट रेज किए हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी और एक मीडिया काउंसिल फॉर ऑफ इंडिया के को बनाने के लिए, तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करेंगे कि ये संकल्प पत्र जो आज हम सब पारित कर रहे हैं हमारे सबके समर्थन से, हम इसको सभी पॉइंटों के साथ सहमत है, हमारा इसको समर्थन है, और साथ में दो महत्वपूर्ण सुझाव जो परम श्रद्धेय प्रोफेसर आमास परमार साहब ने दिए हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हुए मानते हैं। हमें उम्मीद है, आशा और विश्वास है कि इस पर भारत सरकार को इनको इन एक्शन इस पर इस कार्य को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप इसकी पैरवी करेंगे। मैं इस संस्था के लिए केवल इतना ही कहूंगा कि परम पिता परमात्मा बाबा शिव बाबा ने जो इस संस्था बनाया है तो निश्चित रूप से कोई विजन उनका रहा होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया तो मैं कहूंगा कि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना लेता है। आज जो आशियाना बाबा शिव बाबा की कृपा से बना है पूरे देश दुनिया को प्रज्वलित कर रहा है, दुनिया को आपकी रोशनी के माध्यम से हमको ताकत दे रहा है, और मैं 30 सेकंड में एक कृत्य आज मुझे जाने अनजाने में बड़ी गलती हुई उस कृत्य के लिए मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली बार 45 साल की उम्र में मुझे आभास हुआ कि मेरे कृत्य के वजह से किसी को कष्ट हुआ, मैं उस कृत्य के लिए बड़ा माफी चाहता हूँ, और इस आशा और विश्वास के साथ ये संकल्प मैं भी लेता हूँ इस संकल्प पत्र के माध्यम से कि आज के बाद ऐसा कोई कृत्य हम नहीं करेंगे कि जिसके हमारे कृत्य की वजह से किसी को कष्ट हो, इसका भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको कहता हूँ, और पुनः इन दो पंक्तियों के साथ इस बात को खत्म करता हूँ कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर पत्ते नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयों और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
नमस्कार। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, पूरे इस समय लेके हुए उसके वास्ते एक्शन प्लान को अग्री करते हो। थैंक यू।
आज के महानुभावों ने जिन्होंने रेजोल्यूशन को अनुमोदन दिया है उन सबको हम धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच भ्राता घासीराम सेन, ब्यूरो चीफ कृषक कल्याण पत्रिका, गंज बसोदा, उदयपुर नीलकंठ मंदिर की ओर से मंचासीन अतिथियों को वो भेंट प्रदान करेंगे। उनका ग्रुप आएगा और हमारे एक एक अतिथियों को वो अपनी संस्था की ओर से वो सप्रेम भेंट पद प्रदान करें। भ्राता घासीराम सेन जी, ब्यूरो चीफ। हमारे मंच के सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और इसके पश्चात हम सभी 2 मिनट परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे। अभी मैं हमारे सारे ग्रुप को रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से वो अपनी भेंट प्रदान करें। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विजया दीदी हमारे बीच है, आपसे अनुरोध है कि हम सभी को परमात्मा से जोड़े। मेडिटेशन जो पिछले 3 दिन से आप सभी ने सीखा है, लेकिन इस सत्र में हम परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। आदरणीय विजया दीदी, सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया प्रभाग सिद्धपुर से हमारे बीच है, आदरणीय विजया दीदी जी।
ओम शांति। समय समाप्ति की ओर है और काफी समय से आप सभी बैठे हैं और इस समय हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहता है कि उसे शांति मिले। राजयोग ही एक ऐसा अभ्यास है जो हमें मन की शांति और सुकून देता है, तो इसी अभ्यास में हम सभी बैठेंगे और यही संकल्प करेंगे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, देह से न्यारी मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति आत्मा अपने भ्रकुटी के मध्य में विराजमान हूं। ये शरीर मेरा साधन है, मैं साधक आत्मा हूं और उस परम ज्योति साध्य को प्राप्त करने का जो मेन आधार है वो ये राजयोग है। अगर हम सुबह की शुरुआत इस आत्मचिंतन के अभ्यास से करेंगे तो उसका असर सारा दिन हमारे मन की स्थिति पर रहता है, इसलिए दिन भर का ये अभ्यास कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, ये सृष्टि मेरा कर्म क्षेत्र है और इस पर अब मैं पाठ बजा के वापिस अपने घर परम धाम जा रही हूँ कि जहाँ सर्वत्र शांति है, मेरे परम पिता परमात्मा भी इसी धाम के निवासी हैं और उस पिता परमात्मा से मैं शांति की किरणों को प्राप्त कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ और इन्हीं शांति की किरणों से मेरी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जा रही है। यही शांति मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। इसी शांति का अभ्यास हम दिन भर करते रहें तो जरूर मन को शांति मिलेगी और सुकून मिलेगा। इसी श्रेष्ठ चिंतन के साथ मैं आत्मा वापिस इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ बजाने के लिए वापिस आ गई। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद विजया दीदी का, आपने हमें परमात्मा से जोड़ा। मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण विषय है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। अब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से, आज मीडिया प्रभाग की ओर से कॉन्फ्रेंस जो 3 दिवसीय रहा, उस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सभी का आभार दर्शन करना चाहती हूँ। आभार दर्शन का भार बहुत बड़ा भारी होता है और इस भार की जिम्मेदारी शांतनु भाई ने मेरे सिर पर रखी है। तो मैं सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने के लिए परमात्मा ने जो प्रेरणा दी है तो परमपिता श्री परमात्मा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को प्लान करने के लिए हमारे संस्था के ज्वाइंट चीफ आदरणीय मुन्नी दीदी और हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के कमिटी मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए ये डेट्स फाइनल किया। साथ साथ में हमारे इस ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर परिसर शांतिवन के सारे विभाग, मीडिया विभाग की हमारी इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में, हमारे किचन विभाग, हमारे हॉल के सेवाधारी, हॉल के निमित्त भाई बहने, साउंड डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट, वीडियोग्राफी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, साइट्स एंड डिपार्टमेंट, सारे विभागों के हमारे अध्यक्ष मुख्य सेवाधारी भाई बहनों का तहे दिल से मीडिया प्रभाग धन्यवाद करता है। साथ साथ में भारतवर्ष से पधारे हुए ब्रह्मा कुमार भाई बहने जिन्होंने आकर के यहाँ सेवाधारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की, उन सभी सेवाधारियों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपकी सेवा की सराहना करते हैं। आपने दिन रात एक होकर के इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया है। सभी इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में भारत और विदेश से आए हुए वक्तागण जिन्होंने अपने अपने विचारों को यहाँ रखा, अमूल्य समय दिया, उन सभी वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे मीडिया कर्मी, करीबन 3000 से भी ज्यादा मीडिया कर्मियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उन सभी मीडिया कर्मी, हर प्रोफेशन से जुड़े हुए, उन सभी का यहाँ आगमन हुआ और 5 दिवस ये कॉन्फ्रेंस का पूरा लाभ लिया है। कल्चरल ग्रुप जो भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी कलाकारों को भी हम धन्यवाद करते हैं। और जाने अनजाने में कोई भी अगर रह गया है उनका भी हम सूक्ष्म में धन्यवाद करते हैं। सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज हम इस कॉन्फ्रेंस को, यहाँ इस सत्र को पूर्ण करते हैं। लेकिन उससे पूर्व हम आज के बाद इस शिवानी दीदी ने हमें जो टिप्स दी है उनको फिर से दोहराएंगे और उस चीज को हम अपने जीवन में उतारने का संकल्प करेंगे तो ये कॉन्फ्रेंस सार्थक रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। और इस कार्यक्रम के पश्चात हम भोजन करके 8:45-9 बजे पुनः इस हॉल में पहुंचेंगे। बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा होगी। कल प्रातः राजयोग शिविर का भी सत्र है और उसके पश्चात कल आबू दर्शन का भी आपका कार्यक्रम है, तो अभी हम दो मिनट प्रभु पिता परमात्मा को याद करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आज के हमारे सत्र के मुख्य अतिथियों को मैं आदरणीय विजया दीदी के कर कमलों से संस्था की ओर से ईश्वरीय भेंट सौगात अर्पण करने के लिए बहनों को अनुरोध करती हूँ। भ्राता कुलदीप राय शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदामान निकोबार से, दीदी जी को मैं अनुरोध करती हूँ, शॉल पहना करके दीदी जी आपका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम करतल ध्वनि से हमारे एमपी से आपका धन्यवाद करें कि आप इतने दूर से हमारे बीच आज पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में भ्राता ओ एस सैनी जी, ओमवीर सिंह सैनी जी, आप मुंबई से हमारे बीच है, सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी से, आपको भी दीदी शॉल पहना करके ईश्वरीय भेंट अर्पण करके आपका भी सम्मान कर रहे हैं। बस परमपिता शिव परमात्मा की असीम कृपा आपके पर है और सदा रहेगी। साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में आज इस मंच पर हमारे बी के महानुभाव भ्राता अमरचंद भाई, भ्राता आशीष गुप्ता जी को भी दीदी ईश्वरीय भेंट प्रदान कर रहे हैं। बाबा की याद सौगात सदा साथ रहे और मीडिया सेवाओं को आप आगे बढ़ाते रहे। भ्राता अमरचंद भाई आगरा से, अभी हम एक मिनट के लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। सुप्रीम गॉड फादर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मीडिया कर्मी, उसका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट और सुपर होता है, ऐसे बेस्ट मीडिया पर्सन परमात्मा है जिनसे हमारा कम्युनिकेशन मेडिटेशन के थ्रू होता है। तो आइए हम सभी एक मिनट परमात्मा से अपने आप को जोड़े और उस तार को मजबूत करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। प्रभात अगरा